पृष्ठ संख्या 76। मैथिली शरण गुप्त का महत्व। जिस देश और समाज के पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होती है, वहाँ रचना में परंपरा और समकालीनता के बीच सृजनात्मक संबंध बनाने का दायित्व रचनाकारों के सामने होता है, विशेष रूप से नवजागरण की ऐतिहासिक अवस्था में गुजरते हुए। समाज के रचनाकार इस दायित्व की उपेक्षा अपनी रचनाओं की सार्थकता की कीमत पर ही कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त नवजागरण काल के कवि हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के इतिहास और परंपरा से कथा और चरित्र लेकर उन्हें इस रूप में रचा कि वह वर्तमान में समाज को जागरण और उत्थान की प्रेरणा दे सकें। उन्होंने देशभक्त की भावना से संचालित होकर अपने कवि कर्म को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दिया। इस रचनात्मक उद्देश्य में उन्हें सफलता भी मिली। इस प्रसंग में भारत भारती विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें मुसद्दस हाल ही के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाक्य वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें ना था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त की अधिकांश रचनाओं के पात्र आदर्शों के प्रतीक या प्रवक्ता हैं, वास्तविक मनुष्य नहीं। आज जबकि वह आदर्श सपने साबित हो रहे हैं, तब उन आदर्शों के प्रतीक और प्रवक्ता प्रासंगिक कैसे हो सकते? आज की कविता वास्तविक मनुष्य के जीवन यथार्थ और अनुभव से जुड़ी है। इस जीवन यथार्थ के अनुभव के बोध और व्यंजना को बढ़ाने के लिए आज का कोई कवि चाहे तो परंपरा का रचनात्मक उपयोग कर सकता है, जैसा कि मुक्तिबोध और नागार्जुन ने किया है। लेकिन अब मैथिली शरण गुप्त की तरह कथा काव्य लिखना छायावाद से आज तक की हिंदी कविता के रूप या शिल्प संबंधी विकास को छोड़कर पीछे लौटना होगा, जो ठीक नहीं है। यह लगभग वही स्थिति होगी कि आज का कोई चित्रकार चित्रकला के अद्यतन विकास की उपेक्षा करके रवि वर्मा की शैली में चित्र बनाने लगे। कवि पृष्ठ संख्या 77। मैथिली शरण गुप्त चित्रकार रवि वर्मा के समकालीन भले ही ना हो, लेकिन समान धर्मा तो हैं ही। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी कविता का रवि वर्मा कहना अनुचित ना होगा। मिथकों एवं कथानक रूढ़ियों का एक ऐसा मूल अर्थ भी होता है जो उनके इतिहास से जुड़ा होता है और उसे मनमानी ढंग से बदला नहीं जा सकता। इसलिए कई बार मिथकों का मूल अर्थ रचनाकार के अभिप्रेत अर्थ पर छा जाता है। धर्मवीर भारती के अंधा युग और M.F. हुसैन के आपातकाल के दौरान बनाए गए कुछ चित्रों में यह स्थिति दिखाई देती है। इस तरह आज के रचनाकार के लिए यह एक खतरनाक रास्ता है। मैथिली शरण गुप्त की कविता में गांधी युग है और गांधीवाद भी। गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे और विशेष दृष्टि से विचारक भी। गुप्त जी की कविता में जहाँ गांधी युग है, वहाँ स्वाधीनता आंदोलन की चेतना है, और जहाँ गांधीवाद है, वहीं प्रार्थना भाव है, हृदय परिवर्तन है, समन्वयवाद है, सुधारवाद है। वैसे मैथिली शरण गुप्त की सर्वोत्तम रचना साकेत गांधी जी को अपने युग के अनुकूल नहीं लगी थी। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताएं गांधी जी के पास भेजते रहते थे। उनकी कविताएं पढ़कर राष्ट्र कवि को राष्ट्रपिता ने एक पत्र लिखा। इन्वर्टेड कामा, साकेत, अनघ, पंचवटी और झनकार सब रसपूर्वक पढ़ गया, बहुत अच्छे लगे, परंतु टीका करने की मैं अपनी कुछ भी योग्यता नहीं समझता हूँ। तो भी आपने मेरे अभिप्राय पूछे हैं, और क्योंकि जैसे पढ़ता गया वैसे विचार भी आते रहते थे, इसलिए जैसे आए वैसे ही आपके सामने रखता हूँ। उर्मिला का विषाद अगरचे भाषा की दृष्टि से सुंदर है, परंतु साकेत में उसको शायद ही स्थान हो सकता। तुलसीदास ने उर्मिला के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, यह दोष माना गया है। यह दोष माना गया, मैंने इस अभाव को दोष दृष्टि से नहीं देखा, मुझको उसमें कवि की कला प्रतीत हुई है। डॉट 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 एक और चीज भी कह दूं, दशरथ आदि का रुदन तुलसीदास जी के मानस में पढ़ने से आघात नहीं पहुंचता था। तुलसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था, परंतु इस युग की पुस्तक में ऐसा रुदन अच्छा नहीं भाता, उसमें वीरता को हानि पहुंचती है। और इधर भक्ति को भी, यूनाइटेड कमा बंद, स्वाधीनता संघर्ष के काल की कविता में रुदन का इतना विस्तार अगर गांधी जी को अच्छा नहीं लगता, तो वह आज के जन संघर्ष के युग के किसी प्रबुद्ध पाठक को कैसे अच्छा लगेगा। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में यह तथाकथित राष्ट्रीय भावधारा या राष्ट्रीयतावादी कविता एक पहेली है, मगर मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ही राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, तो कक्षायावादी काव्य राष्ट्रीय भावधारा से पृष्ठ संख्या 78 बाहर है। क्या प्रसाद और निराला के काव्य में राष्ट्रीय चेतना नहीं है? असल में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की एक खास तरह की धारणा से जुड़ी हुई है यह राष्ट्रीयतावादी कविता की धारणा। प्रसाद और निराला की कविता में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीयतावादी कविता की राष्ट्रीयता से भिन्न है। छायावादी काव्य की राष्ट्रीय चेतना में साम्राज्यवाद विरोध के साथ साथ सामंतवाद का भी विरोध है, जबकि तथाकथित राष्ट्रीय भावधारा के काव्य में पुनरुत्थानवादी तत्व काफी मात्रा में घुले मिले हैं। निराला के काव्य में जनतंत्रवादी राष्ट्रीयता के साथ साथ समतावादी भविष्य दृष्टि भी है, लेकिन राष्ट्रीय भावधारा की कविता में अतीत का गौरवगान और वर्तमान दुर्दशा पर असंतोष भी है। उसमें जहाँ कहीं भविष्य की चिंता है, वहाँ अतीत के स्वर्णयुग को भविष्य में स्थापित करने का आग्रह है। आजकल आध्यात्मिक मूल्यों की मांग बढ़ गई है, धार्मिक समारोहों की संख्या बढ़ गई है, रेडियो टेलीविजन पर भजन कीर्तन का गायन बढ़ गया है, नई शिक्षा नीति में धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर बढ़ रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रीयता की धार्मिक आध्यात्मिक और सांप्रदायिक व्याख्या करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो क्या आश्चर्य। भारतीय समाज के इतिहास की व्याख्या का यही दृष्टिकोण आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास की व्याख्या में सक्रिय है। धर्म नस्ल और संप्रदाय पर आधारित राष्ट्रवाद के दुष्परिणाम से दुनिया परिचित है। भारतीय महादेश ऐसी राष्ट्रीयता का कुफल भोग चुका है। आजकल देश ऐसी राष्ट्रीयता से उपजी यातना भुगत रहा है। आज सच्ची राष्ट्रीयता की बुनियाद व्यापक श्रमजीवी जनता है, उसकी आकांक्षाओं से जुड़कर भी राष्ट्रीयता लोक कल्याणकारी हो सकती है। मुट्ठी भर अमीरों के स्वार्थ का साधन बनाने के बदले राष्ट्रीयता को मैथिली शरण गुप्त के ही शब्दों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में विकसित करना आवश्यक है। स्वाधीनता आंदोलन में अपने त्याग संघर्ष और बलिदान से नारियों ने समाज में नई स्थिति अर्जित की। यहाँ नारी मुक्ति की चेतना राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन के साथ विकसित हुई। मैथिली शरण गुप्त समय की पुकार सुनने वाले कवि थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक उत्थान के संदर्भ में नारी मुक्ति के महत्व को समझा, लेकिन उनकी नारी मुक्ति की भावना मर्यादावाद और आदर्शवाद से अनुशासित है। यही कारण है कि उनके काव्य में प्रेमचंद के नारी पात्रों की तरह अपने सम्मान अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली स्त्रियां नहीं हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में स्त्रियां केवल अपने ही अधिकारों के लिए नहीं लड़ती, वह अपने परिवार के अस्तित्व, दूसरी स्त्रियों की रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ती हैं। पृष्ठ संख्या 79। प्रेमचंद के कथा साहित्य की स्त्रियां उस समय के स्त्री समुदाय के वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह नारियां प्रेमचंद की यथार्थवादी कला की सृष्टि हैं, इसलिए उनकी स्वाधीनता गुप्त जी के नारी पात्रों के स्वाधीनता की तरह परंपरा के अधीन नहीं है। प्रेमचंद के यहाँ स्त्रियाँ जीवन और समाज में संघर्ष करती हुई स्वतंत्रता अर्जित करती हैं, जबकि गुप्त जी के काव्य में नारी मुक्ति कवि की करुणा पर निर्भर है। शोषण पर टिकी व्यवस्था में धन के सम्मुख जन तुच्छ होता ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने यह देखा कि धन के सामने जन तुच्छ होता जा रहा है। उन्होंने महाजनी सभ्यता के जन विरोधी रूप को पहचाना। उनको इस पहचान का श्रेय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन महाजनी सभ्यता से जनता की मुक्ति का वास्तविक मार्ग उनको न दिखाई पड़ा, इसलिए धार्मिक आदर्श और नैतिक उपदेश से काम चलाया। प्रेमचंद ने 1936 में कहा था, यदि हम अभिधर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना चाहें तो विफलता ही मिलेगी। मतलब यह कि धर्म और नीति के सहारे पूंजीवादी शोषण से जन को बचाने या जन के सम्मुख धन को तुच्छ जताने की आकांक्षा कभी पूरी न होगी। जन की मुक्ति के लिए संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रभाषा का आदि कवि कहते हैं, वह समझते हैं कि खड़ी बोली में काव्य रचना का आरंभ मैथिली शरण गुप्त से हुआ। यह मान्यता सही नहीं है। 19वीं शती के अंत में कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य भाषा का स्वरूप स्थिर हो चुका था। प्रमाण है अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा संपादित खड़ी बोली का पद्य में संग्रहित कविताएं। इस संग्रह में शामिल महेश नारायण की लंबी कविता स्वप्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो 1881 ईस्वी में बिहार बंध में छपी थी। यह कविता भावभूमि, भाषा के स्वरूप, छंद विधान और रचना शिल्प की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह खड़ी बोली की पहली आधुनिक लंबी कविता है, जिसमें मुक्त छंद और फैंटेसी के शिल्प में स्वाधीनता की आकांक्षा व्यक्त हुई है। श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध आदि के हाथों खड़ी बोली काव्य भाषा का निर्मित विकसित वह रूप मैथिली शरण गुप्त को मिला, जिसमें वह लगभग 1905 से रचना करने लगे। गुप्त जी की काव्य भाषा को गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह गए हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि छोटे छंदों के चरणांत में कुछ ऊबड़ खाबड़ और संस्कृत के व्यवहार, बहिष्कृत शब्दों के प्रयोग की ठोकरें लगती हैं। पृष्ठ संख्या 80। तुकों के अतिरिक्त आग्रह से कविता की दुर्गति की बात सब जानते हैं। गुप्त जी ने प्रायः मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली काव्य भाषा के विकास के आरंभिक काल में ऐसे प्रयोगों के प्रयत्न कम हुए जिनमें छंदक में लय के अनुसार लघु गुरु के बंधन की कठोरता के कारण काव्य भाषा में से लचीलापन जाता रहा। लगभग 60 वर्षों के रचना काल में मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में प्रचलित, अप्रचलित, शास्त्रीय, लौकिक अनेक काव्य रूपों में रचना की है। प्रबंध से प्रगीत तक उनका काव्य संसार फैला हुआ है। हिंदी में चंपू का सफल प्रयोग करने वाले वे अकेले कवि हैं, जैसे केशवदास की रामचंद्रिका छंदों की विविधता के लिए याद की जाती है, वैसे ही हिंदी काव्य रूपों की अनेकता के लिए गुप्त जी का काव्य संसार स्मरणीय है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप। गुप्त जी की काव्य भाषा संरचना पद विन्यास और अभिव्यंजना शैली की दृष्टि से बोलचाल की भाषा के अनुरूप है। वह हिंदी भाषा के जातीय रूप, जनजीवन में व्यवहार की भाषा का ही काव्योचित प्रयोग है। कुछ लोग मानते हैं कि गुप्त जी की काव्य भाषा बोलचाल की भाषा के करीब तथा गद्य के पद विन्यास के निकट होने के कारण अकाव्यात्मक और इतिवृत्तात्मक हो गई। यह सही नहीं है। भक्ति काल के अनेक कवियों की काव्य भाषा बोलचाल के निकट है। उर्दू के मीर और गालिब की काव्य भाषा संरचना और अभिव्यंजना शैली की दृष्टि से बोलचाल की भाषा के अत्यंत करीब है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी काव्य भाषा अकाव्यात्मक और इतिवृत्तात्मक है। गुप्त जी की काव्य भाषा के अकाव्यात्मक होने का कारण कुछ और है। वास्तव में गुप्त जी की काव्य भाषा की वाह्य संरचना तो बोलचाल के निकट है, लेकिन उनकी आंतरिक प्रकृति कथात्मक और वर्णात्मक है। कथा कहने और वर्णन करने की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण ही मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा इतिवृत्तात्मक हुई है। प्रायः उनकी कविता में भाषा या तो कथा कहने में लगी रहती है या वस्तुओं के नाम रूप गिनाती बताती वस्तु वर्णन में व्यस्त रहती है। ऐसी कथात्मक और वर्णनात्मक भाषा इतिवृत्तात्मक नहीं तो और क्या होगी। निश्चय ही काव्य भाषा के इस रूप के निर्माण में उनके विशेष प्रकार के भावबोध और वस्तुबोध की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ कविता में भाषा का प्रयोजन कथा कहना और वस्तु वर्णन करना नहीं है, लेकिन भाषा की संरचना बोलचाल के निकट है, वहाँ भाषा का काव्योचित प्रयोग सौंदर्य बोधीय प्रयोजन की साधना में सफल है। उदाहरण के लिए अपनी 60वीं वर्षगांठ पर लिखी गुप्त जी की यह कविता देखी जा सकती है। पृष्ठ संख्या 81। अब वे वासर बीत गए, मन तो भरा भरा है, अब भी पर तन के रस रीत गए। चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़ कर सीत गए, देकर सुध की उमस आगे बढ़, कितने मधु मीत गए। इसे राम जाने जीवन में हारे हम वा जीत गए, इतना ही क्या थोड़ा जो यह गूंज बची है गीत गए। छायावाद के कवियों ने जब कविता की मुक्ति का नारा दिया तो उनके सामने छंद के कठोर बंधन, तुक के अतिरिक्त आग्रह और इतिवृत्तात्मकता के रेगिस्तान में फंसी हिंदी कविता की दुर्दशा थी। छायावादी कवियों ने अपने रचनात्मक प्रयत्न से छंद के बंधन तोड़कर, तुकों का आग्रह छोड़कर कोमलकांत पदावली के सहारे काव्य भाषा में चित्रमयता और लाक्षणिक वक्रता का विकास किया। इस तरह काव्य भाषा अधिक अभिव्यंजक हुई। यह नई काव्य भाषा नए काव्य बोध से उपजी थी। इस तरह कविता की मुक्ति का प्रयत्न भाव और भाषा दोनों स्तरों पर हुआ, लेकिन कविता की इस मुक्ति के प्रयास में काव्य भाषा संरचना और पद विन्यास की दृष्टि से बोलचाल की भाषा से दूर हटती चली गई। काव्य भाषा की यह स्थिति छायावादी कवियों में सबसे अधिक पंत के यहाँ है और सबसे कम निराला के यहाँ। छायावादी कविता की दुरूहता और अलोकप्रियता का एक बड़ा कारण बोलचाल की भाषा से उसकी दूरी है। निराला ने छायावादी काव्य भाषा की इस कमजोरी को पहचाना और अपनी बाद की कविताओं को इससे बचाया। प्रगतिशील कविता ने एक बार फिर काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा के निकट लाने का प्रयास किया।